سورة النساء کی آیت نمبر ہے جی، آیت نمبر 16. اس کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. اللہ العظیم. کل کی پڑھی گئی آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں، خاص کر عورتوں کے بارے میں، ایک حکم ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کے کام کر لیں تو ایسا نہیں زمانے جاہلیت کی طرح فوراً ان کو قتل کر دو، یا شک و شبہ میں ان کو جو ہے ختم کر دو، ایسا نہیں کرنا. اس کا ایک ضابطہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے کہ سب سے پہلے تو تم چار گواہ تیار کرو، پھر مقدمہ پیش کرو، اور چار گواہ مل جائیں تو اب بطور سزا کے ان کو گھر کے کسی کمرے میں بند کر دو، انتظار کرو، یا تو موت آ جائے یا ہماری جانب سے کوئی اور حکم آئے. یہ ارشاد تھا. پھر وہ حکم اللہ جل شانہ نے سورۃ النور میں اتارا واضح طور پر، جس کو زنا کی سزا کہتے ہیں، کہ اگر یہ حرکت کرنے والے غیر شادی شدہ ہیں تو پھر تو ان کو لگائے جائیں گے 100 کوڑے برسر عام، تاکہ دوسروں کے عبرت حاصل ہو. اور اگر شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کے ان کو ہلاک کر دیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا خود نافذ فرمائی ہے. ایک صحابی سے یہ غلطی ہو گئی تھی، رجم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب پتھر مارنا شروع کیا تو وہ بھاگے. اور ایک بات اور بھی، کسی کی زبان سے ایسی بات نکل آئی جو لعنت ملامت سے متعلق تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ناراضگی کا اظہار فرمایا. فرمایا یہ تو اللہ کا حکم نافذ کر رہے ہیں ہم، ورنہ جیسا کہ انہوں نے توبہ کی، اگر وہ توبہ سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ایسی توبہ کی تھی انہوں نے، اور خود آ کر اقرار کیا تھا اپنے جرم کا. تو یہ سزا نافذ فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک روایت اور بھی آ رہی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. وہ اگر ایک صاحب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک ملازم اپنے پاس رکھا تھا اور میری گھر والے نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے، تو مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ تمہارے اوپر اتنے بکریاں ہیں، وہ تم صدقہ دو وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا کہ باسن، اللہ نے حکم اتار دیا ہے، یہ جو تم نے یہ جو اپنی جانب سے کیا ہے نا، اس کے تلافی کے لیے ہوا رد علیک، سب تجھے واپس. اور عقد یا انیس، انیس ایک صحابی ہیں، فرمایا کہ اے انیس، صبح صبح جاؤ اس عورت سے پتہ کرو، اگر وہ اقرار کر لیتی ہے تو اس کو رجم کرو، اور اس لڑکا جو ہے چونکہ وہ غیر شادی شدہ تھا तो फरमाया था कि उसको कोड़े लगा। आपने ये सज़ा खुद नाफिस फरमाई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिस फरमाई है। शादीशुदा गैर शादीशुदा, इसके बारे में एक लफ्ज़ मैंने आपको बताया था, याद होगा। शरीयत मुतहरा में ये जो इन अहकाम के अंदर आता है, शादीशुदा से मुराद निकाह सही के साथ उनकी खलवत हुई हो, निकाह सही के साथ, तो वो शादीशुदा के हुक्म में। और अगर निकाह सही के साथ नहीं है, निकाह भी शुबह से है, या किसी खातून बच्ची के साथ ज़बरदस्ती की गई है, धोखा किया गया है और वो मुतासिर हुई है, तो अल्लाह की शान है, शरी की नज़रों में वो कुंवारी है। उससे अगर ऐसी हरकत सरजद हो जाए तो उसको रजम नहीं करेंगे। निकाह सही के साथ इख्तलात अगर हुआ हो तो वो शादीशुदा हुक्मन है, और अगर निकाह गैर सही या इसके अलावा तो वो उसको शरीयत ने शादीशुदा शुमार नहीं किया। खैर, ये बहस गुजरी थी। आज की जो आयत है ना जी, अच्छा, फिर अल्लाह पाक ने फरमाया था कि उनको बंद कर दो कमरे में, मौत आ जाए या फिर हम कोई हुक्म देंगे। और फिर हुक्म आया सूरह नूर का, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अपने बच्चों को सूरतुन नूर समझाया करो, पढ़ाया करो, उसमें बड़े सारे उसूल ज़ाब्ते क़वानीन अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाए, पर्दे के क़वानीन हैं, घर के अंदर रहने के पर्दे जो हैं वो किस तरह से होगा, सज़ाएँ ज़िक्र, बहुत अहम तरीन सूरत है सूरतुन नूर। फरमाया कि अपने बच्चों को सिखाओ, सिखाने का मकसद ये नहीं कि रटाओ, बल्कि उसके मानी उसके मुतालिब समझाओ कि अल्लाह का ये हुक्म है, अल्लाह का ये हुक्म है, अल्लाह का ये हुक्म है। खैर, आज की जो आयत है ना जी, तो कल वाली आयत में औरत की इज्जत और हुर्मत के सिलसिले में उनके ऊपर एक सज़ा का जिक्र फरमाया था, ऐसे ही है ना। तो जाहिर है ये गलती औरत अकेले तो नहीं कर सकती, जाहिर है उसके साथ कोई मर्द भी शामिल होगा। तो मुफस्सिरीन के दो तबकात हैं, एक तबका तो वो है कि वो जो सिर्फ औरत को ख़िताब करके औरत के मुतल्लिक हुक्म दे दिया, तो अब आगे वाली आयत में मर्द औरत दोनों को, दोनों के बारे में हुक्म दे दिया। जुर्म वही है जिसका तस्करा पहले गुजरा है। चुनांचे मैं तर्जुमा करता हूँ, गौर से देखें। फरमाया वल्लदानी, और तुम में से जो शख्स, दो शख्स, दो अफराद, और दो अफराद से मुराद एक मर्द एक औरत, जो ये गंदे काम करें तुम में से, फ़ादुहुमा, तो उनको अजियत पहुँचाओ, क्योंकि अभी शरी सज़ा का हुक्म नहीं आया, अजियत पहुँचाओ। फ़इन ताबा, फिर अगर वो दोनों तौबा कर लें, व असलहा, और इस्लाह भी कर लें, فَآرِدُوا عَنْهُمَا, تو ان سے اب درگزر کرو۔ اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ ایک تو تشریح یہ ہے کہ چونکہ عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں جو ان پر زیادتی ہو جاتی تھی اس کی تلافی کے لیے ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ ایسے نہیں قتل کر سکتے بلکہ اس طریقے سے ثابت ہو تو یہ سزا ہے۔ اور پھر اللہ میاں نے پکی ٹھکی سزا جو ہے وہ اتار دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمایا۔ تو مرد کا تذکرہ وہاں پر نہیں تھا، تو اس آیت کے اندر اس سے تلافی کی کہ دونوں کا یہی حکم ہے شروع شروع میں، ان کو اذیت پہنچاؤ، عورت کو تو بند کرو گے اور مرد کو اذیت پہنچاؤ، یعنی جوتے، چپل، گھونسا، مکہ، لعنت نہیں کہنا چاہیے، زبان سے آر دلانا، یہ سب ہونی چاہیے۔ یہ شروع شروع کے احکام میں ایسے ہی تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور پھر جو ہے اللہ جل شانہ نے اس سلسلے میں پکی ٹھکی آیت اتار دی۔ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھو، یا تو وہ اعتراف کرے اپنی غلطی کا، یا پھر تم 4 گواہ لے کر آؤ، اور اگر گواہ کوئی نہیں لے پایا، یا 3 لے کر آیا 4th نہیں ملا، تو پھر ان کو، یعنی ان 3 گواہوں کو اور الزام لگانے والوں کو 80-80 کوڑے لگیں گے۔ کیونکہ شریعت مطہرہ کا مزاج ہے کہ جرائم اور فواہش کو छुपाओ 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 छुपाओ, हाँ जी पर्दा डालो। अल्लाह नहीं चाहते कि ये बातें महाशरे के अंदर फैलती रहें, लेकिन जब पता लग जाए कि ये काम हो गया है, खुल जाए, तो फिर उसमें नरमी भी नहीं करनी है सज़ा के अंदर, फिर अच्छी तरह सज़ा देनी है ताकि दूसरों को इबरत हो। एक तो ये तशरीह गुजरी। दूसरी तशरीह जो है मैं आपको सुनाता हूँ। कुछ मुफस्सरीन की राय, खुद हमारे मौला मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, तफसीर मज़हरी वाले मौला काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि नहीं, वल्लदानियातियानिहा का ताल्लुक जो है इस्तिज़लाज़ बिल मिस्ल से है। यानी अगर तुम दो मर्दों में से दो अफराद इस तरह की हरकत करें बेहयाई वाले, वजह क्या है कि औरत की बात हो गई है और अल्लाह मियाँ ने जो ज़मीर इस्तेमाल की है वो दोनों मुज़क्कर की इस्तेमाल की है कि वल्लदानी, और दो अफराद दो मर्द जो ये फाहिश काम करें तुम में से, मुराद इससे है कौम लूत वाला अमल, बदफेली जिसको कहते हैं, गैर फितरी अमल, फरमाया जो ऐसे करें फ़आदूहुमा, तो इनकी भी ठुकाई पिटाई करो अच्छी तरह, फिर अगर तौबा कर लें और इस्लाह कर लें तो फिर अब उनको इनसे तआरुज़ ना करो, और अल्लाह बख्शने वाले मेहरबान हैं। याद रखना चाहिए कि गंदे तरीन कामों के अंदर एक काम ये भी है कि आदमी जो है वो अपने जिन्स से, अपने मिस्ल से जिन्सी तस्कीन हासिल करे। दो मर्दों का आपस में बदकारी करना, और भी हज़रात, और कुरान पाक के अंदाज से और अल्फाज से जो है ज़ाहरी तौर पर यही होता है कि अल्लाह मियाँ यही फरमा रहे हैं कि दो अफराद यानी दोनों मर्द हों, जैसे कि कौम लूत के अंदर था, उन पर अल्लाह का अजाब आया, और कैसा अजाब आया, सारी बस्ती जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़मीन से उसको उठाकर ले गए आसमानों तक, उल्टा पटक दिया और ऊपर से फिर पत्थरों की बारिश फरमाई है और सारी बस्ती को तबाह बर्बाद किया है। तो ये जुर्म यहाँ पर मुराद है। तो फरमाए कि फ़आदूहुमा, अगर कोई ऐसा कर ले तो उनको अजियत पहुँचाओ। अब अजियत पहुँचाने के बाद अजियत किस तरह होगी, तो ये जहन में रखनी चाहिए बात। अइम्मा कराम में हज़रत इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल और इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ और भी दीगर हजरात फरमाते हैं कि इसकी सज़ा भी वही है जो जिना की सज़ा है। अगर शादीशुदा है तो रजम करो, और अगर शादीशुदा नहीं है तो उनको कोड़े लगाए जाएं। अबू हनीफा रहमुल्ला फरमाते हैं कि चूंकि सराहतन ये सज़ा इस तरह के बदकारी करने वालों के लिए अल्लाह ने नाजिल नहीं फरमाई, लिहाजा इसको हवाले किया जाए काजी के, और उसको जो है इस सिलसिले में इख्तियार है ताज़ीर के तौर पर जो मुनासिब चाहे सज़ा दे। यहाँ तक के फरमाते हैं कि अगर ये बात और ये अमल उनसे मुतअद्दद बार हुआ है तो काजी उनको जो है पहाड़ पर ले जा कर के नीचे फेंक देगा, ऊपर से पत्थर की बारिश, काजी उनको आग लगवा देगा अगर उनके इन मामले की शोहरत हो रही है, इसी तरह कत्ल भी कर सकता है। चुनांचे हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला उनके दौर में हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला उन्हें किसी इलाके में गए हैं ज़िम्मेदारी संभालने के लिए, उन्होंने ख़त लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन यहाँ ये है कुछ ऐसे हैं या एक दो अफराद ऐसे हैं जिनके बारे में ये शोहरत है और उसके लिए शवाहिद भी हैं कि इस तरह बदकारियाँ करते हैं। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने मीटिंग बुलाई बड़े बड़े सहाबा रज़ी अल्लाह तआला की, जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने भी थे, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने साफ साफ फरमाया कि देखें ये ऐसी हरकत है जो कौम लूत की जानिब मंसूब है, और फरमाया कि फरिश्तों को हुक्म हुआ था कि इनकी बस्तियों को ज़मीन से उठाकर पटक दिया जाए, लिहाजा ऐसा करने वालों को या तो यह है कि पहाड़ पर ले जा कर के नीचे फेंक दिया जाए या फिर उनको आग लगा दी जाए। अबू बकर रजी अल्लाह ताला उन्होंने ऐसे शख्स के लिए हुक्म दिया था कि इसको आग में जला दिया जाए, यानी इतनी शिद्दत है इस जुर्म की, इतनी शिद्दत। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले के अंदर बड़ी शदीद अहादीस हैं, चुनांचे मैं एक दो हदीसें सुनाता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला उन्हें रवायत कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से 7 किस्म के लोगों पर 7 आसमानों के ऊपर से लानत भेजी है, और उन 7 में बाज़ तो ऐसे हैं जिन पर 3-3 दफ़ा लानत भेजी है, और फरमाया मलऊन है वो शख्स जो कौम लूत वाला अमल करता है। 3 मरतबा फरमाया मलऊन है वो शख्स, मलऊन है वो शख्स जो कौम लूत वाला अमल करता है, लानत भेजी। ऐसे ही अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दूसरी हदीस आ रही है, फरमाया कि 4 आदमी सुबह एक वक्त अल्लाह जल्ला शानू के गज़ब में होते हैं और शाम को भी अल्लाह जल्ला शानू के गज़ब के अंदर होते हैं। फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन लोग हैं? आपने फरमाया वो मर्द जो औरतों की तरह बनते हैं। एक तो ये है अलमुतशब्बिहीन बिन्निसा, औरतों की तरह बनते हैं यानी औरतों की तरह जीनत करते हैं, और इसी तरह वो औरतें भी जो मर्दों की तरह बनती हैं, और फरमाया वो शख्स भी जो किसी चौपाए के साथ गैर फितरी हरकत करता है, और वो मर्द भी जो मर्द से कदाए शहवत करता है। फरमाया ये 4 आदमी ऐसे हैं जो सुबह भी अल्लाह के गज़ब के साथ करते हैं और शाम भी अल्लाह के गज़ब के साथ इनकी गुजरती है, अल्लाह की पनाह। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, फरमाया कि जिसको तुम देखो कि यह अमल कर रहा है तो फरमाया कि फ़ाइल व मफूल दोनों को कत्ल कर दो। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैसला मैंने आपको सुना दिया, फरमाया था कि उसको जला दिया जाए, आग में जला दिया जाए। मुनासिबत से एक बात और भी अर्ज कर दूं इस जगह पर, चूंकि ये गैर फितरी अमल जो है मर्द का मर्द के साथ अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाला है, याद रखना चाहिए ये गैर फितरी अमल कोई शख्स अगर अपनी घरवाली के साथ करे, और इस तरह की शिकायतें आती हैं आप लोग बस नहीं आती हूँ हमारे पास आती रहती, अल्लाह की पनाह। हज़रत खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया सुनो इन्नल्लाह ला यस्तहयी, अल्लाह तुम्हें अहकाम देने में हया नहीं करते। फरमाया कि अपनी औरतों के पास गैर फितरी तरीके पर हरगिज़ ना आना। और इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, फरमाया वो शख्स मलऊन है, मलऊन अल्लाह की रहमत से दूर हमेशा के लिए जो बीवी के साथ इस तरह करता है। ऐसी फरमाया कि जो शख्स जो है उज्र की हालत में, हैज की हालत में अपनी बीवी के पास जाए या गैर फितरी तरीके से जाए या किसी काहिन के पास जाता है, फरमाया कि ऐसा करने वाला मेरे लाए हुए दीन का मुनकिर हो चुका है, उसने इनकार कर दिया। हासिल कलाम यही है कि दूसरी तशरीह जो है इस सिलसिले में आयत की ऐसी है जिसमें दो अफराद गैर फितरी अमल करते हों, तो फरमाया कि फ़आदूहुमा, उनको अज़ियत पहुँचाओ। अज़ियत की शक्ल क्या है? फ़ुक़हा हज़रात शदीद तरीन कहते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं कि ये काजी अगर मुनासिब समझता है तो उसको पहाड़ से नीचे गिरा दें या उसको आग लगा दें या बतौर सज़ा के उनको कत्ल कर दिया जाए। ये शरीयत मुतहरा में उनकी सज़ा जो है मुतय्यन है। अल्लाह जल्ला शानु से दुआ फरमाए, अच्छा ये भी फरमाए कि अगर वो तौबा कर लें सच्ची तौबा, और फिर फरमाए कि फिर अब उन पर ताना जनी ना करना, क्योंकि किसी पर ताना जनी करना चाहे उससे कोई भी जुर्म हुआ हो अल्लाह को ये पसंद नहीं है। क्या पता उसने ऐसी तौबा की है जैसा कि उन सहाबी के बारे में मैंने कहा कि किसी की ज़बान से इस तरह की बात आ गई थी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि माइज़ ने तो ایسی توبہ کی ہے اگر سارے اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے. تو فرمائے کہ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں. اللہ جل شان سے دعا ہے اللہ پاک نے جو باتیں سمجھائی ہیں اور جو باتیں اللہ کی غضب کو دعوت دینے والی ہیں اور جو اللہ کی جانب سے لعنت کا مستحق کرنے والی ہیں، اللہ ان تمام کاموں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما لے.